ख यजुर्वेद संहिता एक यजुष यजुष यजुः का अर्थ। यजुर्वेद के यजुष शब्द की कई व्याख्याएं प्रस्तुत की गई हैं जो विभिन्न दृष्टिकोण के सूचक हैं। यजुष के मुख्य अर्थ हैं यजुर यजतेह अर्थात यज्ञ से संबद्ध मंत्रों को यजुष कहते हैं। इज्यते अनेनेति यजुः अर्थात जिन मंत्रों से यज्ञ किया जाता है उन्हें यजुष कहते हैं। यजुर्वेद का यज्ञ के कर्मकांड से साक्षात संबंध है अतः इसे यजुर्वेद भी कहा जाता है। यज्ञ के कर्मकांड से साक्षात संबंध है तो इसे यजुर्वेद भी कहा जाता है। यज्ञ में अध्वर्यु नामक ऋत्विज यजुर्वेद का प्रतिनिधित्व करता है और वही यज्ञ का नेतृत्व करता है। अतएव सायण ने कहा है कि वह यज्ञ के स्वरूप का निष्पादक है। अध्वर्यु नामक एक ऋत्विक यज्ञस्य स्वरूपम् निष्पादयति अध्वरम् युनक्ति अध्वरस्य नेता। तीन अन्यताक्षरावसानो यजुः अर्थात जिन मंत्रों में पद्यों के तुल अक्षर संख्या निर्धारित नहीं होती है वे यजुष हैं। शेषे यजुः शब्दः पूर्व मीमांसा अर्थात पद्यबंध और गीति से रहित मंत्रात्मक रचना को यजुष कहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि सभी गत्यात्मक मंत्र रचना यजुः की कोटि में आता है। पाँच एक प्रयोजनम साकाक्षम पद जातम एकम यजुः अर्थात एक उद्देश्य कहे हुए साकांक्ष एक पद समूह को यजुः कहेंगे। इसका अभिप्राय यह है कि एक सार्थक वाक्य को यजुः की एक इकाई माना जाता है। तैत्तिरीय संहिता के भाष्य की भूमिका में सायण ने यजुर्वेद का महत्व बताते हुए कहा है कि यजुर्वेद भित्ति अर्थात दीवार है और अन्य ऋग्वेद एवं सामवेद चित्र हैं। इसलिए यजुर्वेद सबसे मुख्य है। यज्ञ को आधार बनाकर ही ऋचाओं का पाठ और सामगान होता है। भित्ति स्थानियो यजुर्वेद चित्र स्थानावितारौ तस्मात् कर्मसु यजुर्वेदस्यैव प्राधान्यम् यजुर्वेद का दार्शनिक रूप। ब्राह्मण ग्रंथों में यजुर्वेद का दार्शनिक रूप प्रस्तुत किया गया है। यजुर्वेद विष्णु का स्वरूप है अर्थात इसमें विष्णु परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है। यजुर्वेद प्राण तत्व और मनस तत्व का वर्णन करता है अतः वह प्राण है मन है। यजुर्वेद में वायु और अंतरिक्ष का वर्णन है अतः वह अंतरिक्ष का प्रतिनिधि है। यजुर्वेद तेजस्विता का उपदेश करता है अतः वह मह तेज है। यजुर्वेद छात्र धर्म और कर्मठता की शिक्षा देता है अतः वह क्षत्रियों का वेद है। दो यजुर्वेद की शाखाएं शुक्ल एवं कृष्ण शाखाएं। यजुर्वेद मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त है एक शुक्ल यजुर्वेद दो कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो संप्रदाय प्रचलित हैं एक आदित्य संप्रदाय दो ब्रह्म संप्रदाय। शुक्ल यजुर्वेद आदित्य संप्रदाय से संबद्ध है और कृष्ण यजुर्वेद ब्रह्म संप्रदाय से। शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट उल्लेख है कि शुक्ल यजुर्वेद आदित्य से संबद्ध है और यह याज्ञवल्क्य के द्वारा आख्यात है। आदित्यानिमानि शुक्लानि यजुंसि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येन आख्यायन्ते। शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसनेयी संहिता और माध्यन्दिन संहिता भी कहते हैं। याज्ञवल्क्य इसके ऋषि हैं वे मिथिला के निवासी थे। पिता का नाम वाजसनी होने से याज्ञवल्क्य को वाजसनेय कहते थे। वाजसनेय से संबद्ध संहिता वाजसनेयी संहिता कहलाई। याज्ञवल्क्य ने मध्यान्ह के सूर्य से इस वेद को प्राप्त किया था अतः इसे माध्यन्दिन संहिता भी कहते हैं। शुक्ल और कृष्ण भेदों का आधार यह है कि शुक्ल यजुर्वेद में यज्ञों से संबद्ध विशुद्ध मंत्रात्मक भाग हैं। इसमें व्याख्या विवरण और विनियोगात्मक भाग नहीं है। ये मंत्र इसी रूप में यज्ञों में पढ़े जाते हैं। विशुद्ध और परिष्कृत होने के कारण इसे शुक्ल स्वच्छ अमिश्रित यजुर्वेद कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद का संबंध ब्रह्म संप्रदाय से है। इसमें मंत्रों के साथ ही व्याख्या और विनियोग वाला अंश भी मिश्रित है अतः इसे कृष्ण अथवा अस्वच्छ मिश्रित कहते हैं। इसी आधार पर शुक्ल यजुर्वेद के परायणकर्ता ब्राह्मणों को शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद के परायणकर्ता ब्राह्मणों को मिश्र नाम दिया गया है। इस विषय में एक आख्यायिका भी प्रचलित है। गुरु वैशंपायन एक बार अपने शिष्य याज्ञवल्क्य से रुष्ट हो गए और उन्होंने आदेश दिया कि वह उनकी शिक्षा लौटा दें। याज्ञवल्क्य ने सारी मंत्र विद्या उगल दी। वैशंपायन के एक अन्य शिष्य ने तित्तिर तीतिर तीतर का रूप धारण करके उसे उगले हुए को खा लिया। अतः उनकी शाखा तैत्रीय कहलाई। याज्ञवल्क ने सूर्य की उपासना की और मध्यान्ह के सूर्य से पुनः यजुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। अतः इसे माध्यान्ह संहिता भी कहते हैं। यजुर्वेद की 100 शाखाएं महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में 100 मध्वर्यु शाखा आनिक एक कहा है, अर्थात यजुर्वेद की 100 शाखाएं हैं। षड गुरु शिष्य की सर्वानुक्रमणी की वृत्ति में तथा कूर्म पुराण में भी यजुर्वेद की 100 शाखाओं का उल्लेख मिलता है, परंतु चरण व्यूह में यजुर्वेद की 86 शाखाओं का ही उल्लेख मिलता है। इनका संक्षिप्त वर्गीकरण एवं विवरण इस प्रकार है। क चरक शाखा 12, ख मैत्रायणीय 7, ग वाजसनेय 17, घ तैत्तिरीय 6, कठ 44। चरण व्यूह में कठ की 44 शाखाओं का नाम निर्देश नहीं है। इसे प्रतीत होता है कि यजुर्वेद की शाखाएं क्रमशः लुप्त होती जा रही थी और चरण व्यूह के समय में केवल 42 शाखाएं ही उपलब्ध थी। कठ शाखा के 44 ग्रंथों एवं उनके लेखकों के नाम भी लुप्त हो चुके थे। संप्रति केवल 6 शाखाएं ही उपलब्ध हैं, 2 शुक्ल यजुर्वेद की तथा 4 कृष्ण यजुर्वेद की। 3 शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, उनकी एक एक संहिताएं उपलब्ध हैं। एक माध्यान्ह या वाजसनेयी संहिता, इसमें 40 अध्याय और 1975 मंत्र हैं। अतएव यजुर्वेद के संदर्भ में केवल 2 संख्याएं रहती हैं, एक अध्याय की और दूसरी मंत्र की। जैसे ईशावास्यम, अर्थात यह 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र है। शतपथ ब्राह्मण में यजुर्वेद के अक्षरों की संख्या 288,000 दी गई है, अर्थात 8,036 अक्षर वाली बृहत्ती छंद। 2 कांडव संहिता, इसमें भी 40 अध्याय हैं और मंत्र संख्या 286 है, अर्थात वाजसनेयी शाखा से इसमें 111 मंत्र अधिक हैं। इसका विभाजन अध्याय अनुवाक और मंत्र के रूप में हुआ है। अध्याय 40, अनुवाक 328 और मंत्र 2086 है। इसमें मंत्रों के क्रम में भी अंतर मिलता है। महर्षि कर्ण का उल्लेख ऋग्वेद में भी है। मंडल 1, 8 और 9 में अनेक सूक्तों के दृष्टा कर्ण और उसके वंशज हैं। आदित्य पुराण के अनुसार कर्ण के पिता बोधायन थे और याज्ञवल्क उनके गुरु थे। बोधायन पितृत्वाच्च प्रशिष्यत्वाद बृहस्पते शिष्यत्वाद याज्ञवल्क्यस्य कर्णवो भुन महतो महान। महर्षि कर्ण इस शाखा के प्रवर्तक हैं। श्री सातवलेकर ने वाजसनेयी संहिता के साथ ही कांडव संहिता के पाठ भेद परिशिष्ट के रूप में दिए हैं। श्री सातवलेकर ने कांडव संहिता का पृथक संस्करण भी प्रकाशित किया है। वैदिक संशोधन मंडल पुणे तथा संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी ने भी इसके संस्करण प्रकाशित किए हैं। आजकल कांडव संहिता का प्रचार प्रसार महाराष्ट्र में ही है और माध्यान्ह का उत्तर भारत में, परंतु प्राचीन काल में कांडव शाखा का प्रचार उत्तर भारत में भी था। कांडव संहिता में कुरु पांचाल का उल्लेख मिलता है। महाभारत आदि पर्व के अनुसार शकुंतला के धर्म पिता महर्षि कर्ण का मालिनी नदी संप्रति बिजनौर जिले में कोट द्वार के पास मालन नदी के तट पर आश्रम था। कर्ण का उत्तर प्रदेश से साक्षात संबंध रहा। 4 शुक्ल यजुर्वेद की विषय वस्तु। यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है। इसमें विभिन्न यज्ञों की विधियां और उनमें पाठ्य मंत्रों का संकलन है। यज्ञ करने वाले ऋत्विज को अधवर्यु कहते हैं। ऋग्वेद में अधवर्यु के विषय में कहा गया है कि वह यज्ञ का संयोजक और निष्पादक होता है, अतः वह यज्ञ का नेता होता है। यज्ञस्य मात्रां वि मिमि उत्वः ऋग्वेद। यास्क ने अधवर्यु की व्याख्या में कहा है, अध्वरम युनक्ति अध्वरस्य नेता, अर्थात यज्ञ का संयोजक और यज्ञ का नेता। इस प्रकार यजुर्वेद कर्मकांड का प्रमुख ग्रंथ है। यजुर्वेद की शुक्ल और कृष्ण शाखाओं में विषय वस्तु प्राय एक ही है, अतः वाजसनेयी संहिता के अनुसार प्रतिपाद्य विषयों का संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। अध्याय 1 और 2, इसमें दर्श कोष्ठक अमावस्या के बाद वाली प्रतिपदा कोष्ठक बंद और पौर्णमास पूर्णिमा से संबद्ध यागों का वर्णन है। इसमें अग्निहोत्र और चातुर्मास इष्टियों का वर्णन है। चातुर्मास इष्टियों से अभिप्राय है चार चार मास पर ऋतु परिवर्तन होने पर किए जाने वाले विशेष यज्ञ। अध्याय 4-8 इनमें अग्निष्टोम और सोमयाग का वर्णन है। अग्निष्टोम ज्योतिष्टोम का परिष्कृत रूप है। यह स्वर्ग की कामना से किया जाता है। इसमें 16 पुरोहित होते हैं और यह 5 दिन चलता है। सोमयाग में सोमरस में दूध मिलाकर आहुति दी जाती है। यह याग प्रातः मध्यान और सायं 3 बार होता है, अतः इसे प्रातः सवन, मध्यान सवन और सायं सवन कहते हैं। अध्याय 9-10 इनमें वाजपेय और राजसूय यागों का वर्णन है। इसमें राजाभिषेक, राजा के अधिकार और कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन है। अध्याय 11-18 इनमें अग्निचयन और विविध प्रकार की वेदियों के निर्माण से संबद्ध मंत्र हैं। वेदी की रचना 10,800 ईंटों से की जाती है। इनकी आकृति यज्ञ के अनुसार विभिन्न प्रकार की होती है। कुछ वेदियां शेन, गरुण आदि पक्षियों के आकार की होती हैं। 16वां अध्याय रुद्राध्याय कहा जाता है। इसमें रुद्र के विराट रूप का विस्तृत वर्णन है। अध्याय 19-21 में सौत्रामणि याग का विधान है। राजा च्युत राजा अपने राज्य की पुनः प्राप्ति के लिए भी इस याग का अनुष्ठान करता है था। अध्याय 22-25 इनमें अश्वमेघ यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। सार्वभौम आधिपति के लिए अश्वमेघ यज्ञ किया जाता है। अध्याय 22 आ ब्रह्मन यह राष्ट्रीय प्रार्थना भी सम्मिलित है। अध्याय 24 जंतु विज्ञान के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सैकड़ों पशु पक्षियों का उल्लेख है। अध्याय 26-29 इन अध्यायों को खिल अध्याय कहते हैं। इनमें पूर्वोक्त यागों से संबद्ध नवीन मंत्र हैं। अध्याय 30 इसमें पुरुष मेध का वर्णन है। इसमें पूरे समाज को एक विशाल पुरुष मानते हुए 184 व्यवसायों का उल्लेख है। समाज शास्त्रीय अध्ययन के लिए यह अध्याय बहुत उपयोगी है। अध्याय 31 इसे पुरुष सूक्त और विष्णु सूक्त भी कहते हैं। इसमें विराट पुरुष के स्वरूप का वर्णन है। अध्याय 32 इसमें विराट पुरुष के दार्शनिक और आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन है। अध्याय 33 सर्वमेध सूक्त है। अध्याय 34 इसमें प्रारंभ के 6 मंत्र शिव संकल्प उपनिषद में मनः शिव संकल्प मस्तु कहे जाते हैं। मनोविज्ञान के दृष्टि से यह अध्याय अति महत्वपूर्ण है। अध्याय 35 इसमें पितृमेह का वर्णन है। अध्याय 36-38 इनमें प्रवर्ग नामक यज्ञ से संबद्ध मंत्र है। अध्याय 39 इसमें अंत्येष्टि से संबद्ध मंत्र है। इसे प्रायश्चिताध्याय भी कहते हैं। अध्याय 40 इसे ईशोपनिषद और ईशावास्योपनिषद कहते हैं। यह अध्याय यजुर्वेद का अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। इसे उपनिषदों में प्रथम स्थान प्राप्त है। यह सब उपनिषदों का आधार माना जाता है। इसमें आध्यात्म और दर्शन का अपूर्व सम्मिश्रण है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि यजुर्वेद में जिन यागों और इष्टियों का वर्णन किया गया है वे किसी विशेष उद्देश्य से प्रेरित यज्ञ हैं। कुछ यज्ञ स्वर्ग प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति के लिए हैं, जैसे अग्निष्टोम आदि। कुछ यज्ञ क्षत्रिय वर्ग या नृप आदि की श्रीवृद्धि तथा उनकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आयोजित होते थे, जैसे अश्वमेघ आदि। कुछ यज्ञ ब्राह्मण वर्ग की ओजस्विता, तेजस्विता एवं मेधावृद्धि के लिए होते थे, जैसे वाजपेय आदि। कुछ यज्ञ सार्वजनिक उन्नति के लिए होते थे, जैसे सर्वमेध आदि। इनमें व्यावसायिक उन्नति और श्रीवृद्धि की कामना की गई है। कुछ सूक्त जैसे पुरुष सूक्त, शिव संकल्प सूक्त, ईशोपनिषद आदि आध्यात्मिक और दार्शनिक भावों को अभिव्यक्त करने के लिए हैं। 5 कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में मुख्य अंतर यह है कि शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र भाग है, किंतु कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ उनकी व्याख्या और विनियोग आदि का भी उल्लेख है। चरण व्यूह में यजुर्वेद की 86 शाखाओं का उल्लेख है, जिसमें से शुक्ल यजुर्वेद की 17 शाखाएं हैं, शेष 69 कृष्ण यजुर्वेद की हैं। कृष्ण यजुर्वेद में भी तैतरीय शाखा के 2 मुख्य भेद हैं, औख्य और खांडिकेय। खांडिकेय के 5 भेद हैं, आपस्तंभ, बौधायन, सत्याषाढ़, हिरण्यकेश और कात्यायन। मैत्रायणी के 7 भेद हैं और चरक या कट के 12 भेद हैं। कट के 44 उपग्रंथ भी हैं। संप्रति कृष्ण यजुर्वेद की केवल 4 शाखाएं ही उपलब्ध हैं। ये हैं तैतरीय, मैत्रायणी, काठक, कपिष्ठल कठ शाखा, तैतरीय संहिता। यह तैतरीय शाखा की संहिता है और कृष्ण यजुर्वेद की सबसे प्रमुख संहिता है। इसमें 7 कांड, 44 प्रपाठक और 631 अनुवाक हैं। अनुवाकों के भी उपभेद खंड किए गए हैं। अतः तैतरीय संहिता के संदर्भ निर्देश में 4 संख्याएं आती हैं, जैसे देवा वसव्या अग्नि सोम सूर्य। इसका अभिप्राय यह है कि यह मंत्र या संदर्भ तैतरीय संहिता के कांड 2, प्रपाठक 4, अनुवाक 8 के खंड 1 में है। यही एक संहिता है जिसके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, शुल्ब सूत्र और धर्म सूत्र प्राप्य हैं। अतः यही संहिता सर्वांग पूर्ण है। इसी संहिता के बौधायन और आपस्तंभ के श्रौत, गृह, शुल्ब, धर्म सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इसमें भी शुक्ल यजुर्वेद के तुल्य विविध यागों का वर्णन है। कांडों के अनुसार वर्ण विषय ये हैं। कांड 1 दर्श, पूर्णमास, अग्निष्टोम, राज, सूर्य। कांड 2 पशु विधान, इष्टि विधान, कारीरी इष्टि। कांड 3 पवमान ग्रह आदि, व्याकृत विविध इष्टि होम। कांड 4 अग्नि चिति, देव यजन ग्रह, चिति वर्णन, वशोर्धारा संस्कार। 5 उख्य अग्नि, चिति निरूपण, इष्ट कात्रय, वायव्य पशु आदि। कांड 6 सोम मंत्र ब्राह्मण। कांड 7 अश्वमेघ, षडरात्र आदि, शत्र कर्म आदि। तैतृय संहिता का विशेष प्रचार महाराष्ट्र, आंध्र और दक्षिण भारत में है। आचार्य सायण की यही अपनी शाखा थी, अतः उन्होंने सर्वप्रथम इसी संहिता का विस्तृत भाष्य किया था। सायण से पूर्ववर्ती भट्ट भास्कर मिश्र 11वीं शती ईस्वी ने भी ज्ञान यज्ञ नामक भाष्य इस पर किया था। इसमें आध्यात्मिक और आधिदैविक अर्थ भी दिए गए हैं। डॉक्टर कीथ ने इसका इंग्लिश में अनुवाद किया है और विस्तृत भूमिका दी है। पूरी संहिता में गद्य और पद्य भाग का मिश्रण है। ख मैत्रायणी संहिता, यह मैत्रायणीय शाखा की संहिता है। मैत्रायणीय शाखा कठ या चरक की 12 शाखाओं में से एक है। मैत्रायणी संहिता की 7 शाखाओं का उल्लेख चरण व्यूह में मिलता है। ये शाखाएं हैं मानव, 2 दुंदुभ, 3 ऐकेय, 4 वाराह, 5 हरिद्रवेय, 6 श्याम, 7 श्यामायनीय। पंडित भगवत दत्त और श्री सातवलेकर ने इस शाखा के प्रवर्तक का नाम हरिवंश पुराण के एक श्लोक के आधार पर मैत्रायण या मैत्रीय माना है। इसमें मंत्र और व्याख्या भाग मिश्रित हैं। इसमें 4 कांड, 54 प्रपाठक और 3144 मंत्र हैं। इन मंत्रों में से 1701 ऋचाएं ऋग्वेद से उद्घृत हैं। ऋग्वेद में भी प्रथम मंडल से 419 मंत्र, षष्ठ मंडल से 157 मंत्र और दशम मंडल से 323 मंत्र उद्घृत हैं। इस प्रकार ज्ञात होता है कि प्रथम, षष्ठ और दशम मंडल से अधिकांश मंत्र 899 संग्रहित हैं, शेष मंडलों से कम हैं। वर्ण वस्तु की दृष्टि से अन्य यजुर्वेद की शाखाओं के तुल्य इसमें भी विभिन्न यागों का वर्णन है। 4 कांडों में इन विषयों का उल्लेख है। कांड 1 दर्श, पूर्णमास, अध्वर, अग्निहोत्र, चातुर्मास्य और वाजपेय याग। कांड 2 काम इष्टियाँ, राजसूय और अग्निचिति। कांड 3 अग्निचिति, अध्वर आदि के विविध सौत्रामणी और अश्वमेघ याग। कांड 4 अखिल नाम से विख्यात है। इसमें पूर्वोक्त राजसूय, अध्वर, प्रवर्ग्य और याजी अनुवाक आदि से संबद्ध अन्य आवश्यक सामग्री दी गई है। श्री सातवलेकर ने मैत्रायणी संहिता के संस्करण में पाद टिप्पणी में विस्तार से यह निर्देश किया है कि मैत्रायणी संहिता के ये मंत्र यजुर्वेद की अन्य शाखाओं में कहाँ कहाँ मिलते हैं, जैसे वाजसनेयी संहिता, कांडव संहिता, तैतरीय संहिता, काठक संहिता, कपिष्ठल संहिता में तथा ऋग्वेद, सामवेद और शतपद ब्राह्मण आदि में तुलनात्मक अध्ययन के लिए यह बहुत उपयोगी है। ग काठक संहिता, इसे कठ संहिता भी कहते हैं। यह कठ शाखा की संहिता है। यह चरकों की शाखा मानी जाती है। इसमें 5 खंड हैं। उनके नाम हैं 1 इठिमिका, 2 मध्यमिका, 3 औरिमिका, 4 याज्ञवाक्या, 5 अश्वमेधादि अनुवचन। इसके खंडों और उनके उपविभागों के नाम कुछ विचित्र हैं। उपखंडों को स्थानक और अनुवचन नाम दिया है। इनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। खंड 1 इठिमिका स्थानक 1 से 18 मंत्र 1 से 1538। खंड 2 मध्यमिका स्थानक 19 से 30 मंत्र 1539 से 2053। खंड 3 ओरिमिका। खंड 4 याज्ञवाक्या स्थानक 31 से 40 मंत्र 2054 से 2799। खंड 5 अश्वमेधादि वचन 1 से 13 मंत्र 2800 से 3028 अनुवचन। इस प्रकार 5 खंडों में स्थानक 40 धनवचन 13 53 उपखंड अनुवाक 843 और 3028 मंत्र हैं। मंत्र और ब्राह्मणों की सम्मिलित संख्या 18000 है। काठक संहिता में वर्णित प्रमुख 19 याग क्रमशः ये हैं: 1 दर्श पूर्णमास, 2 ज्योतिषोम, 3 अग्निहोत्र, 4 उपस्थान आदि कर्म, 5 आधान, 6 काम्य इष्टिया, 7 विविध पयस्या याग, 8 पशुबंध, 9 वाजपेय, 10 राजसूय, 11 अग्निचयन, 12 पत्नीवत याग, 13 अतिरात्र आदि सत्र, 14 एकादशिनी, 15 प्रायश्चितियां, 16 चातुर्मास्य, 17 गोसौ आदि याग, 18 सौत्रामणि, 19 अश्वमेघ। कृष्ण यजुर्वेद की चारों संहिताओं में प्रायः स्वरूप की एकता है और विविध यागों में प्रयुक्त मंत्रों में भी बहुत साम्य है। इसका मूल कारण यह है कि ये शाखाएं वस्तुतः एक यजुर्वेद की ही शाखाएं हैं, अतः इनमें स्वरूप और प्रयोग में साम्य है। महर्षि पतंजलि ने लिखा है, ग्रामे ग्रामे काठकम कालापकम च प्रोच्यते। इसे ज्ञात होता है कि पतंजलि के समय में काठक और कलाप शाखा का प्रत्येक ग्राम में प्रचार था। आजकल यह शाखा प्रायः लुप्त हो चुकी है। इस संहिता के स्वर चिन्ह निर्देश में अंतर है। इसमें केवल उदात्त अक्षर के ऊपर ही ऊर्ध्व रेखा स्वरी जैसा चिन्ह का है, अनुदात्त और स्वरित पर चिन्ह नहीं है। यह नियम स्मरणीय है कि उदात्त से पहला अक्षर अनुदात्त होता है और उदात्त के बाद वाला अक्षर यदि उसके बाद पुनः उदात्त न हो तो स्वरित होता है। यदि बाद में उदात्त होगा तो पूर्ववर्ती अक्षर अनुदात्त ही रहेगा। यह पद्धति अत्युत्तम है। अतः पाश्चात्य विद्वानों ने सभी संहिताओं में केवल उदात्त पर ही स्वर चिन्ह लगाया है। घ कपिष्ठल कठ संहिता। यह शाखा चरण व्यूह के अनुसार चरकों की 12 शाखाओं में से एक है। यह कपिष्ठल कठ शाखा की संहिता है। प्राचीन काल में कठों की कई शाखाएं प्रचलित थी, जैसे कठ, प्राच्य कठ और कपिष्ठल कठ। इस शाखा के प्रवर्तक कपिष्ठल ऋषि थे। पाणिनि ने कपिष्ठलो गोत्रे तथा दुर्गाचार्य ने निरुक्त की टीका में अहम च कपिष्ठलो वशिष्ठ का उल्लेख किया है। इससे ज्ञात होता है कि ये वशिष्ठ गोत्र के थे। विद्वानों का अनुमान है कि कुरुक्षेत्र के पास कैथल ग्राम कपिष्ठल का ही अपभ्रंश है और यह कपिष्ठल ऋषि का निवास स्थान था। डॉक्टर रघुवीर ने इसका एक सुंदर संस्करण 1932 में लाहौर से प्रकाशित किया था। यह ग्रंथ अपूर्ण है। यह ऋग्वेद के तुल्य अष्टकों और अध्यायों में विभक्त है। इसकी स्वरांकन पद्धति भी काठक संहिता के तुल्य है। इसके केवल 6 अष्टक उपलब्ध हैं। 48 अध्याय पर समाप्ति है। बीच में कई अध्याय सर्वथा नहीं है या अपूर्ण है। इसमें अध्याय 9 से 24, 32, 33 और 43 सर्वथा खंडित हैं। 6 अश्वमेघ आदि याग। यजुर्वेद के कई अध्यायों में मेध वाले यज्ञ हैं, यथा अश्वमेघ अध्याय 22 से 29 पुरुष मेध या नर मेध, अध्याय 30 से 31 सर्व मेध, अध्याय 32 से 33 पितृमेध, अध्याय 35 आदि। कतिपय भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों को भ्रांति है कि मेध शब्द केवल बलि या वध का वाचक है। यह शब्द मेध्री संगमे च धातु से बना है, जिसका अर्थ है संगम, गुणों से युक्त होना, मेघा ज्ञान वृद्धि और हिंसा। अतः केवल हिंसा अर्थ को लेकर सर्वत्र बलि देना अर्थ करना अज्ञानता है। कालिदास का प्रयोग है, प्रजायै गृहमेधिनाम रघुवंश, अर्थात संतान के लिए गृहमेधी होना या गृहस्थ धर्म को अपनाना। गृहमेध का प्रयोग घर को बलि देना या घर का वध करना नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथों के देखने से ज्ञात होता है कि मेध शब्द का प्रयोग उन्नति, प्रगति, तेजस्विता आदि के लिए होता था। यजुर्वेद में मेध शब्द का प्रयोग अन्न के लिए हुआ है। शतपथ, तैत्री और कौशित के ब्राह्मणों में मेध का अर्थ घी, अन्न और भोज्य पदार्थ तथा पौष्टिक पदार्थ बताए गए हैं। अतः जौ, चावल और पुरोडाश को मेध बताया है। यजुर्वेद में अश्वमेध आदि शब्द राष्ट्रीय उन्नति और प्रगति के लिए है, यथा पितृमेध या पितृयज्ञ का अभिप्राय है माता पिता की सेवा, शुश्रूषा और उन्हें अन्नादि से तृप्त रखना। मेध शब्द का प्रयोग श्री वृद्धि, समृद्धि, उन्नति आदि के लिए होता था। शतपथ और तैत्री आदि ब्राह्मण ग्रंथों में अश्वमेघ की अनेक पारिभाषिक व्याख्याएं की गई हैं। इनके अनुसार अश्वमेघ का अर्थ है राष्ट्र की श्रीवृद्धि, राष्ट्र को धन धान्य से समृद्ध करना, राष्ट्र को तेजस्वी, ऊर्जस्वी और ब्रह्मचर्यस्वी बनाना। ब्रह्म वर्चस्वी बनाना। इसी प्रकार पुरुष मेध या नर मेध का अर्थ है मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति, सर्वमेध का अर्थ है प्रजा मात्र की सर्वतोमुखी उन्नति। अतएव गोपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि सर्वमेध अर्थात सर्वजन समुन्नति के द्वारा राजा सर्वराट सबका अधिपति हो जाता है। गोमेध का अभिप्राय है गोवंश की रक्षा और पशु समृद्धि। यजुर्वेद का अध्याय 30 पुरुष मेध कहा जाता है। इसमें 184 वृत्तियों और वृत्तिजीवियों का उल्लेख है। इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सभी हैं। इस पुरुष मेध का अभिप्राय एक मंत्र में स्पष्ट किया गया है कि ब्राह्मणे ब्राह्मणम क्षत्राय राजन्यम मरुद्भ्यो वैश्यम तपसे शूद्रम। इसका अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण का कर्तव्य है ब्रह्म शक्ति ज्ञान या विद्या की वृद्धि करना, क्षत्रिय का कर्तव्य क्षात्र धर्म की उन्नति करना, वैश्य का कर्तव्य है मरुत के तुल्य व्यवसाय के द्वारा सबको जीवनोपयोगी वस्तुएं प्राप्त कराना, शूद्र का कर्तव्य है तपस्या श्रम साध्य कार्यों को करना। इस मंत्र से स्पष्ट है कि इस अध्याय में जो 184 वृत्तियां गिनाई गई हैं उनकी सर्वविध उन्नति करना और उनको राजकीय संरक्षण देना। इसी प्रकार सर्वमेध का अभिप्राय है सार्वजनिक या सामूहिक उन्नति और प्रगति। मेध शब्द ईश्वरोपासना आदि के प्रसंगों में आत्मसमर्पण या ईश्वरार्पण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार अंत्येष्टि के प्रसंग में नरमेध या पितृमेध शब्द अंत्येष्टि क्रिया का बोधक है।